हमारे बीच आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार राजू भाई जी उपस्थित हैं। हम सभी भाई साहब का एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे। भाई जी का परिचय इस प्रकार से है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में प्रतिदिन सुनाए जाने वाले परमात्म महावाक्यों के लिखित संकलन आप मुरली विभाग के प्रमुख हैं। परमात्मा पिता से अव्यक्त रूप में आपको दिव्य बुद्धि का वरदान मिला हुआ है। आप ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय मधुबन निवासी हैं। आप यहीं से ग्रामीण सेवा प्रभाग में उपाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ईश्वरीय ज्ञान का मनन ये आपका रुचिकर विषय है। ईश्वरीय ज्ञान का मंथन कर आप मुरली का सार वरदान एवं स्लोगन मक्खन के रूप में हम सभी आत्माओं को परोसकर ईश्वरीय तंदुरुस्ती प्रदान करते हैं। स्व उन्नति हेतु प्रकाशित मासिक पत्र पुष्प आपके द्वारा ही प्रकाशित होता है और मुख्यालय से होने वाले पत्र व्यवहार दादियों के बिहाफ पर आप ही संभालते हैं। आपका जीवन सादगी तपस्या और निरंतर सेवा का सुंदर उदाहरण है। आप विशेष रूप से मुरली के गूढ़ रहस्यों को सहज और हृदय स्पर्शी शैली में समझाने के लिए प्रसिद्ध हैं। आपने साकार बाबा मम्मा और दादियों की पालना ली है। आपके पास साकार पालना एवं दादियों की अनमोल शिक्षाओं का अखुट भंडार है। आपकी क्लास में हमें साकार पालना के अनुभवों का गहरा लाभ मिलता है। आपके प्रति भाव सुमन अर्पित करती हूँ। सादगी तपस्या और सेवा का सुंदर संगम है आप। सादगी तपस्या और सेवा का सुंदर संगम है आप राजू भाई जी। सचमुच बाबा के प्रेम का अनुपम दर्पण है आप राजू भाई जी। सचमुच बाबा के प्रेम का अनुपम दर्पण है आप आदरणीय राजू भाई जी। बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप का अनुभव कैसे करें इस सुंदर विषय पे अपने अनुभव युक्त विचार हम सबके सम्मुख रखेंगे।
ओम शांति। बाबा के इस तपस्या भूमि में मधुबन घर में तपस्या करने का गोल्डन चांस आप सबको मिला है। यहाँ तो बाबा से जुदा होते ही नहीं होते हैं क्या? कहते हैं तेरे कण कण से तेरी याद आती है, इधर जाओ उधर बाबा बाबा बाबा, अमृत वेले से रात्रि तक बाबा के साथ मिलन होता ही रहता है। बहुत सुंदर विषय है। और बाबा कई बार कहते थे, एक बार बाबा ने बच्चों से पूछा कि बाबा का निवास स्थान कहाँ है, कहाँ है? दिल में है। वैसे तो भक्ति मार्ग में उनको सब जगह कह दिया, सर्वव्यापी है। भावना से कहा था, अभी उसको सिद्धांत बना दे तो उनकी मर्जी। भावना तो बहुत अच्छी थी, जिधर देखते उधर तू ही तू है, और अगर तू ही तू है तो तेरी नजरों के सामने कुछ गलत नहीं हो सकता। इस भावना से भगवान को सब जगह कहा गया, लेकिन लोग समझने लगे सचमुच वो शायद सब जगह है। तो बाबा ने भी अपने बच्चों को कहा कि जहां बच्चों के स्नेह का घेरा है, दिल की याद है, बाबा वहीं रहते हैं, उनका वही निवास है। तो हम सब वर्तमान समय चलते फिरते कर्म करते बाबा को अपने साथ कंबाइंड करके रहते हैं। यही स्मृति रहती है, करावन हार करा रहा है, उसने मुझ आत्मा को निमित्त बनाया है। यही एक स्मृति कंबाइंड कर देती है, अलग नहीं होते हम, कोई जुदा कर भी नहीं सकता है उस खुदा से। तो वर्तमान समय हर एक बाबा के बच्चे को ये अनुभव होना चाहिए कि हम तो बाबा के साथ साथ खाते पीते उठते बैठते सोते, उसके सिवाय और मेरा है ही कौन, संसार ही बाबा है। लेकिन जब एक कंबाइंड स्वरूप की बातें आती हैं तो कैसे कंबाइंड हो जाएंगे, क्या विधियां हैं? आज हम सब देख रहे हैं कि इस शरीर के साथ आत्मा इतना घनिष्ठ कंबाइंड हो गई, जो हम कितनी मेहनत करते हैं इससे अलग होने की, पुरुषार्थ करते हैं कि इसको भूल जाएं, हम भूलता ही नहीं। एक बार एक जगह मैं क्लास करा रहा था तो एक रमणीक भाई था, क्लास में खड़ा होकर के बोलता है, भाई जी पता नहीं कौन सा फेविकोल लगा दिया जो आत्मा और शरीर दोनों ऐसे फिक्स हो गए, अलग ही नहीं होते। हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, मैं आत्मा इस शरीर से अलग एक न्यारी प्यारी चैतन्य शक्ति हूँ। बाबा ने यही पाठ तो पढ़ाया मुरली में, मुझे याद करने के लिए अपने को आत्मा निश्चय करके मुझे याद करो। तो कंबाइंड कौन होगा, आत्मा और परमात्मा दोनों का रूप एक है और दोनों के गुण भी समान होते जाएं तो उसके साथ हम रह सकते हैं। लेकिन अगर गुणों में बहुत अंतर है, बाबा एक बार कहा था जोड़ी कौन सी अच्छी लगती है, अगर समान नहीं होती, एक बहुत मोटा है एक बहुत लंबा है, एक काला है एक गोरा है, तो जोड़ी कैसी लगेगी, साथ रहना ही नहीं चाहेंगे लोग। स्थूल लौकिक में भी जोड़ी पसंद करते हैं। हमारा बाबा तो बिल्कुल लाइट, परम पवित्र है, स्वच्छ है, जरा भी वहाँ इम्प्योरिटी नहीं है, और हम कहें हम उसके साथ कंबाइंड हो जाएं, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए सोचना, इस पर बाबा के साथ कंबाइंड होने के लिए हमें भी वैसा ही बनना पड़ेगा। अगर इन विचारों में जरा भी गंदगी या स्वच्छता है, व्यर्थ है, नेगेटिव चलता है, तेरी मेरी बातों में उलझे हुए रहते हैं, तो बाबा को याद भले कर लो लेकिन उसको साथ नहीं रख सकते। उसके साथ कंबाइंड होने के लिए तो समान बनना पड़ेगा, और ऐसी समानता जो हम सब देख रहे हैं कि हमारा ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ कंबाइंड हो गया। शिव बाबा उस रथ में आए, अपने संग का ऐसा रंग लगाया जो अपने समान उसको पावन बना के, संपूर्ण बना के अपने साथ वतन में बिठा दिया, और इतने वर्षों से अव्यक्ति रूप में हम बच्चों की पालना की कंबाइंड होकर के, अलग होके नहीं। साकार बाबा की मुरलियों में तो कभी कभी पता भी चलता है ये ब्रह्मा बाबा का अनुभव है, ये शिव बाबा की बात है। अव्यक्त वाणियों में, अव्यक्त बाबा की मुरलियों में तो कोई पता ही नहीं चलता ये ब्रह्मा बाबा बोल गए या शिव बाबा। अगर वो बताते हैं कि ब्रह्मा बोल रहे हैं तो पता चलता है। इतना दोनों कंबाइंड हो गए, जो उनकी दृष्टि, उनकी बोल, उनकी सब बातों में समानता हो गई, अंतर करना ही मुश्किल हो गया। बाप दादा एक साथ हो गए, जुड़वा हो गए। ऐसी कंबाइंड स्थिति हम बच्चों की भी बन जाए, तो जैसे शरीर भूलने से भी, भुलाने से भी नहीं भूलता, जरा भी कुछ हो जाए शरीर में, जरा कहीं दर्द हो रहा है, आत्मा को तो नहीं हो रहा है लेकिन आत्मा इस शरीर के अंदर है और इतना कनेक्ट है उसके साथ, जो जरा भी कुछ नीचे ऊपर होगा, कहीं चींटी भी छोटी सी काट के जाएगी तो फट से उसको दर्द महसूस होगा, ध्यान चला जाएगा, ऐसा कंबाइंड है वो। तो हम सब बाबा के साथ सदा कंबाइंड रहें। एक बार बाबा ने कहा, साकार बाबा की मुरली में था, कि बच्चे ब्रह्मा बाबा को डबल लाइट है, ब्रह्मा बाबा जब दृष्टि देते हैं तो दो फोकस हैं, शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा, दो लाइट है ना, और जब दृष्टि देते हैं तो बाप दादा दोनों ही देते हैं तो डबल फोर्स से मिल जाती है दृष्टि। तो मेरा कहीं क्लास था तो मैंने कहा, आज बाबा कहता है कि हम डबल लाइट हैं, दो लाइट एक साथ है मरकुटी में और हम सभी तो ट्रिपल लाइट हैं, तीन है हमारे साथ। तो इस पर फिर एक बार बाबा ने मुरली चलाई कि बच्चे आप बच्चे मास्टर त्रिमूर्ति हो। इस पर मैंने बहुत अभ्यास किया, कई जगह ये भट्टी कराई, क्लास कराई, कि आप सब इसका अनुभव करके देखो, हम मास्टर त्रिमूर्ति हैं। आप हिस्ट्री हॉल में जाएंगे, अभी तो वहां कुर्सी रख दी है, पहले दो गद्दियां थी, एक बाबा की एक मम्मा की, ऐसे टेका वाली नहीं, ऐसी सीधी गद्दी थी, और उस गद्दी पर पहले मम्मा आती थी एक गद्दी पर बैठ करके मुरली चलाती थी, और जब बाबा अपने कमरे से उस हाल तक जाते, हिस्ट्री हाल की बात है, तो बाबा खड़ाऊ पहनते थे, खट खट की आवाज आई और ज्यों बाबा उस सीढ़ी को चढ़े तो मम्मा को आवाज पहुंच गई कि बाबा आ रहे हैं, बस मम्मा चुप, बाबा अंदर जाएंगे, बच्ची जो बोल रही थी अधूरी बात पूरा करो, पूरा नहीं बाबा, अब आप आ गए ना, अभी आप बोलेंगे, मैं नहीं बोलूं, अपना मुंह घुमा लिया बाबा की तरफ ऐसे देखती रही। फिर मम्मा बाबा बैठे होते और कोई बच्चे कोई गीत गाने के लिए, कोई अच्छी पॉइंट सुनाने के लिए, उनको बीच में बाबा बिठा लेते, खड़ा कर लेते या कुर्सी डलवा देते दोनों के बीच में, तो त्रिमूर्ति बन जाती है। ये दृश्य इमर्ज करना, एक तरफ मम्मा है, एक तरफ बाबा है और बीच में एक बच्चा है, और उसको हिम्मत दिला रहे, हाँ बच्चे गाओ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हम सब भी ऐसे मास्टर त्रिमूर्ति कंबाइंड हो जाओ, एक तरफ ब्रह्मा बाबा बहुत परम पवित्र हो गए शिव बाबा के समान, और एक तरफ तो परम पवित्र पतित पावन सर्वशक्तिमान शिव बाबा। और जब हम बाबा की याद में बैठे तो ऐसे चमकता हुआ सितारा है, दोनों के बीच में है, दोनों की शक्तियों का अनुभव कर रहा है। जब नमाज शाम को योग करना ना, 15 मिनट ऐसे बैठ जाओ, मैं मास्टर त्रिमूर्ति हूँ, बीच में भ्रकुटी में मैं आत्मा चमक रही हूँ और इधर इधर दोनों तरफ शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की शक्तियाँ हैं। बहुत सुंदर अनुभव होगा, आप ऐसे लगेगा कि हम वतन में ही बैठे हैं, कहीं जाएंगे नहीं, यहीं हैं, लेकिन कंबाइंड है, दोनों की शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं। वर्तमान समय नाजुक परिस्थितियों के बीच में, बहुत सारा वायुमंडल में नेगेटिविटी है, कई प्रकार की कलियुग की अंतिम विद्याएं चल रही हैं, बहुत समाचार सुनना पड़ता, कहीं तंत्र मंत्र भूत विद्या, ये विद्या वो विद्या, लोगों को इतना परेशानी होती है, परेशान करते हैं लोग बदला लेने के कारण, ईर्ष्या के बस, कोई वैर विरोध के कारण, कुछ न कुछ ये लास्ट भूत विद्या का प्रभाव चल रहा है। और ऐसे समय पर हम सभी ब्राह्मण बच्चों को अपनी सेफ्टी अपने आप करनी है, और वो सेफ्टी यही है कि हम बाबा के साथ सदा कंबाइंड रहें, वो इतनी परम पवित्र शक्ति है जो कोई भी आसुरी शक्तियां उसको टच भी नहीं कर सकती। इसका अनुभव करो चलते फिरते उठते बैठते, और विशेष करके जब सवेरे सवेरे आंख खुलती है ऐसे समय में अनुभव करो जैसे शिव बाबा इस भ्रकुटी के साथ मेरे पास कंबाइंड हो गए। कभी हम शिव बाबा के साथ अकेले भी कंबाइंड अनुभव करते हैं, और कभी कभी बाबा को बुलाते ब्रह्मा बाबा साथ में आ जाओ। अव्यक्त बाप दादा जैसे दादी के तन में आते, गुलजार दादी के तन द्वारा 48 साल तक बाबा का पाठ चला। एक बार जब शुरू शुरू में बाबा ने शरीर छोड़ा था तो बच्चों ने कहा कि मुझे बाबा से ब्रह्मा बाबा से मिलना है अलग से। वैसे तो पता नहीं चलता शिव बाबा ब्रह्मा बाबा कौन आ गया, तो जब एप्लीकेशन दी संदेशी ने जाके बोला कि बच्चे ब्रह्मा बाबा से मिलना चाहते हैं अलग से, तो शिव बाबा ने एक दिन भेज दिया जाओ बच्चे मिलो जाके। तो एक मुरली है आप देखेंगे 18 तारीख को बाबा ने शरीर छोड़ा है या 23 या 24 में एक मुरली है 69 की बात है, तो उसमें ब्रह्मा बाबा खुद आए अकेले आए। तो बाबा के बच्चों के बहुत सारे प्रश्न थे बाबा के कि बाबा ऐसे आप कैसे चले गए, बताया ही नहीं, इशारा भी नहीं दिया। तो बाबा ने उसका सबका उत्तर दिया। फिर कोई बच्चे ने कहा बाबा अपने शरीर छोड़ने का अनुभव सुनाओ, कैसे आपने शरीर छोड़ा, तो उसका अनुभव भी बाबा ने उस मुरली में सुनाया। फिर बाबा मुरली सुनाते सुनाते कहते हैं शिव बाबा ने कहा है ज्यादा देर नहीं रहना, नहीं तो बच्चों के प्यार में फंस जाओगे, वापस जल्दी आ जाना। तो बाबा ऐसे बोलते बोलते वापस चला गया। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ कैसे कंबाइंड रहते हैं, और इस समय वर्तमान समय हम कभी कभी देह मान में रहने के कारण बाबा को भूल जाते हैं, लेकिन बाबा से सच्चे दिल का प्यार है जो जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहने का अच्छा अभ्यास करता है बाबा उसके साथ साथ कंबाइन हो जाता है। क्योंकि शरीर तो बाबा को है नहीं है, दोनों को भी नहीं है। ब्रह्मा बाबा अगर लाइट के शरीर में हैं तो जब बाबा दादी के तन में आते थे तो लाइट का शरीर होता था, वो तो एक लाइट का आभा मंडल है, प्यूरिटी का एक घेरा है, प्रकाश का एक छाया है, उसमें कोई शरीर हड्डी मांस तो है नहीं। तो लाइट प्रकाश की छाया में ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों आए और दादी के तन में प्रवेश हो गए। तो जब प्रवेश हुए तो वो जो छाया है ना उसका रूप आप देखेंगे, गुलजार दादी के चेहरे का जो चमक है जो रौनक है वही बदल जाती थी। शिव बाबा की प्रवेशता हुई पता चल जाता था कि बाबा आ गए। तो हम लोग तो बहुत साथ रहते थे, समीप बैठते थे, मुरली लिखते थे, बाबा जो बोलते थे, और जब आते थे तो बाबा को ऐसे देखते रहते थे और पता चल जाता था, भले बाबा ने आंख नहीं खोली है लेकिन हम एक दूसरे को बोलते बाबा आ गए, लाइट चेंज कर दो, बाबा आ गए। आते ही क्या पता चल जाता कि वो परम पवित्र लाइट शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों प्रवेश हुए तो चेहरे पर वो पवित्रता की बहुत रूहानियत की एक झलक दिखाई देने लगी, परिवर्तन हो गया शरीर, वाणी भी परिवर्तन हुई, रूप भी परिवर्तन हो गया। अब बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे उसी स्वरूप में निरंतर कंबाइंड होकर के रहें, तब माया की छाया से माया के वार से आसुरी शक्तियों के वार से बच सकेंगे। बहुत जरूरी है ये अभ्यास, इसलिए चलते फिरते कर्म करते यही स्मृति रहे कि बाबा मेरे साथ है, कंबाइंड है, वो हमसे जुदा नहीं हो सकता। लेकिन साथ तो उसके रहेगा जो बिल्कुल बहुत प्यारा बच्चा हो, लवली हो, जो बहुत पवित्र हो, स्वच्छ हो। वैसे भी कोई बड़े आदमी को बुलाओ अपने घर में, आपके घर में कोई VIP आए, कोई मधुबन वाला आता, कोई भी आता है, तो क्या क्या ध्यान रखते हैं, भाई सब ठीक होना चाहिए, बिस्तर ठीक होना चाहिए, ऑफिस ठीक होना चाहिए, कुछ इधर उधर गंदगी नहीं होनी चाहिए, स्वच्छता का बहुत ध्यान देते हैं। अगर हम बाबा के साथ कंबाइंड रहना चाहते हैं तो पहले तो मन बुद्धि की बहुत स्वच्छता चाहिए। किसी भी प्रकार का व्यर्थ अगर है, किचड़ा है, अपने प्रति है, लोगों के प्रति है, किसी के प्रति है, संकल्प नेगेटिव हैं, व्यर्थ हैं, इधर उधर की बातें मन में चल रही हैं और हम कहें बाबा आ जाओ मदद करो कंबाइंड हो जाओ, आएगा बाबा? अरे स्थान तो स्वच्छ कर, मैं कहाँ हूँ? तो इसलिए बाबा को अगर अपने साथ अपने दिल आसन पर, दिल ये नहीं हार्ट वाला, ये तो शरीर का अंग है, आत्मा अपने बच्चों के मस्तक के बीच, जैसे बाबा कहता मुझे कितना स्थान चाहिए, कभी कभी शिव बाबा पूछते थे मुझे कितना स्थान चाहिए, बच्चे मेरे को बहुत छोटा सा, मैं ब्रह्मा के बाजू में आके बैठ जाता हूँ, दिखाई नहीं देता हूँ, साथ में आके बैठ जाता हूँ। तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा तो संगम पर कंबाइंड हो गए, फिर कंबाइंड रूप से इतनी बड़ी सेवाएं की, हम सब की इतनी पालना हुई। सबसे वंडरफुल बात तो ये है कि आज साकार के समय जो सेवाएं नहीं हुई, बाबा के अव्यक्त होते ही देश विदेश में चारों तरफ सेवाओं का डंका बज गया और उसमें दो आत्माएं कंबाइंड हो गई। अब वो कंबाइंड दूसरा रूप देखो आप, दीदी और दादी, सुना है ना दीदी दादी की जोड़ी, देखा है किसी ने? दादी को तो देखा होगा, प्रकाश में दादी को देखा है? नहीं देखा, ये तो कुछ तो है। यहाँ दीदी मनमोहिनी को तो नहीं देखा हो, है कोई दीदी वाले बैठे पीछे? एक दो हैं दीदी वाले, 83 दीदी अव्यक्त हुई। और दीदी दादी की जोड़ी ऐसी थी जो कहते थे शरीर दो हैं आत्मा एक है, ऐसी कंबाइंड थी। शरीर भले दो थे लेकिन इतना आपस में संस्कार मिलन, हम कहते थे यहां मैंने दीदी से बात की और दादी तक कौन सी टेलीपैथी है जो उनको पता चल गया। एक ने अगर कुछ कह दिया और दूसरे के पास आप जाओ तो पता नहीं कैसे कैच कर लेते, अच्छा तुम तो दीदी से मिल के आया ना, हम दादी से मिलके दीदी के पास, अच्छा तुमने दादी से बात कर ली ना, दादी के जो विचार है वो दीदी कट कर सकती है क्या? नहीं, आने की जरूरत भी नहीं है। इतना दोनों ने संस्कार मिलाए, इतना आपस का स्नेह, कोई भी सेवा में एक दूसरे के प्रति इतना प्यार, बात करना, बताना, मिलना, जो बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा ने इन दोनों पर इतना फेथ रखा, जो दीदी दादी ने जो उनके ऊपर सेवा की जवाबदारी आई, देखो संस्कार अलग हैं। दीदी मधुबन में बाबा के साथ रहती थी, यहाँ पर मम्मा के अव्यक्त होने के बाद बाबा ने दीदी को दिल्ली से बुलाया और मम्मा की चारपाई पर रखा और वो समय बहुत बेगरी पार्ट था, इकोनॉमी का पार्ट था, क्योंकि इतना सब सेवाएं नहीं थी, इतने बच्चे नहीं थे, तो हर बात की इकोनॉमी का अवतार दीदी, एक एक चीज का ध्यान रखती, मधुबन वालों पर फुल नजर रखती। हम लोग समर्पित हुए 71 में आए, आने के समय देखा कि एक एक चीज किसके पास क्या है, क्या खाता है, कैसे रहता है, एक कायदा था यज्ञ का कि कोई भी अपने पास व्यक्तिगत पैसा नहीं रख सकता, समर्पित है, कोई को कोई चीज चाहिए तो भंडारी एक डब्बा रखा होता था, लिख करके उसमें डाल दो, एक टाइम खोल करके देखा जाएगा किसको क्या चाहिए और उसी अनुसार उसको फल चाहिए, उसको कोई चीज चाहिए, कोई साधन चाहिए, मिलता था, मना कुछ नहीं था, हिम्मत चाहिए कि मुझे चाहिए, लिख करके डाल लेंगे। तो दीदी दादी, दीदी बहुत इकोनॉमी से यज्ञ को चला रही थी और दादी बॉम्बे से आई, बॉम्बे में रहती थी, हाथ खुला होता है, फ्राक दिल भी थी, बड़ी दिल भी थी। तो दीदी दादी को जब साथ में रखा, यज्ञ में रखा बाबा ने, दोनों को निमित्त बनाया, तो दीदी एक एक रुपए का ध्यान, एक एक पैसे का ध्यान, यहां तक अगर हम लोगों को घर में पत्र कहीं लिखना होता लिफाफा नहीं मिलता था, उस समय 50 पैसे का लिफाफा था। कहती थी तुम्हारे 5-7 लोग जो यूपी के हैं ना, उत्तर प्रदेश के, जो एक सेंटर के कनेक्टेड भाई बहने हैं, वो सब लिख करके ले आओ, एक एक कागज का टुकड़ा मिल जाता था, जो जिसको लिखना है लिख करके लाओ परिवार के लिए पत्र, और एक लिफाफा बना करके एक साथ सेंटर पर भेज देना, उनको लिख दे दीदी दी, भाई इनके पिता को ये पत्र दे देना, उनका जवाब लेके भेज देना, अलग पर्सनल नहीं किसी को लिखना, एक एक को 50 पैसे का लिफाफा नहीं मिलेगा। ये इकोनॉमी थी हमारी मधुबन की। दादी जी आई, दादी जी को लगता था इनको क्या खिलाएं, क्या पहनाएं, क्या दें, बहुत दिल बड़ी थी। दीदी कहे नहीं, बाबा के यज्ञ में बहुत इकोनॉमी से चलना है। दोनों ने इतना अपने संस्कारों को मिलाया, एक कर लिया, एक ने कहा दूसरे ने मान लिया, कभी भी नहीं डिबेट किया होगा, नहीं ऐसा करें ऐसा करें। वो समय था दीदी दादी का कंबाइंड रूप, और उस कंबाइंड रूप से यज्ञ की इतनी विस्तार, इतनी सेवाएं हुई जो कोई इधर उधर बात नहीं कह सकता था, दीदी के विचार ऐसे हैं, दादी के विचार। अगर कोई इधर उधर की बात कहेगा तो उसी को उसी समय बुला करके कहेंगे, अच्छा तुम बताओ अभी क्या सुना, क्या कहा, सुनी सुनाई बातों पर फेत नहीं था। वो यज्ञ की वृद्धि और विस्तार का आधार बना। जो विस्तार हुआ है, एक हर साल एक नई बिल्डिंग बनी होगी, नए नए बाबा के बच्चों को समर्पित किया गया। हम लोग आए कुमार, छोटे छोटे 16 साल 17 साल वाले समर्पित किया, लेकिन उनकी पूरी बायोग्राफी जानना, उनको एक एक को चेक करना कि यहाँ के लायक है, यहाँ की विशेषताओं के अनुसार चल सकता है, मर्यादाओं को पालन कर सकता है। विस्तार किया दोनों ने, पालना दी, पढ़ाया, सिखाया, सब कुछ किया, योग्य बनाया, साथी बनाया, हर चीज ट्रांसफर करते गए सेवाएं। तो आज देखो उनके जाने के बाद, अव्यक्त होने के बाद, यज्ञ कितना निर्विघ्न रूप से वैसे ही चल रहा है, क्योंकि उन्होंने पिल्लर्स तैयार कर दिए, एक एक के अंदर वो क्वालिटी भरी, त्याग की, तपस्या की, इकोनॉमी की, उसके अनुसार यज्ञ का विस्तार हुआ। अब बाबा चाहते हैं ये अंतिम समय में माया के चारों तरफ से अटैक है, भिन्न भिन्न रीति से। 10 स्वरूप है ना माया के, 10 शीश हैं, 5 तो हमारे महाशत्रु विकार ही हैं, उनके बाल बच्चे, उनके तो रचना बहुत बड़ी है, 5 प्रकृति के तत्व हैं, उनका भी बहुत तभी उग्र रूप है। देख रहे हो इस मई के महीने में क्या गर्मी चारों तरफ से, कितना चारों तरफ से हाहाकार का जैसे प्रकृति का वातावरण है। अब ये 10ों पर सुरक्षा के लिए बच्चों को बाबा कह रहे हैं, इनसे सुरक्षित रहना है तो आप बच्चों का पवित्र घेरा बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। आत्मा के अंदर अगर वो पवित्रता की पावर कम भी है, लेकिन बाबा को अगर कंबाइंड बना लिया तो वो ऐसा ओरा बनेगा, वो साथ है हमारे, सर्वशक्तिमान साथ है। और एक गीत है ना, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। कुछ भी आए, कैसी भी परिस्थितियां आए, अगर बाबा को हमने कंबाइंड बना लिया है, निशानियां दिखाई देंगी, बहुत निर्भय, निश्चिंत, निडर, कहीं भी चला जाए कोई परवाह नहीं, साथ कौन है। ऐसे ऐसे कई केस होते हैं, हमारी बहनें इतना फेथ फुल होकर, कहीं उग्रवादियों के बीच में अगर जाना हो, कहीं ऐसी परिस्थितियां आ जाएं, उनको ये नशा रहता है मेरे साथ कौन है, रहता है सबको। बाबा को ऐसा प्यारा संबंधी बनाओ, ऐसा साथी बना लो जो उसको कोई अलग ही न कर सके। जितना दिल का सच्चा प्यार है, जितनी स्वच्छता है, जितना समर्पण भाव है, उतना बाबा की समीपता का कंबाइंड स्वरूप का अनुभव होता है। जरा भी समर्पण भाव नहीं है, कहीं पर भी बुद्धि जाती है किसी तरफ भी। एक बात बहुत रमणीक बाबा कई बार कहते हैं, जब कोई परीक्षा बच्चों के सामने आती है तो बाबा की तरफ ध्यान जाने की बजाय जाता है वो फलाना भाई होता तो बहुत अच्छा है, फलाना डॉक्टर होता तो इस समय अच्छी दवाई दे देता। बुद्धि एक मिनट भी अगर कहीं पहले नंबर में किसी देहधारी की तरफ चली गई तो बाबा साक्षी हो जाता है, मुस्कराता है, अच्छा ठीक है उसी से मदद ले लो तुम। और जब कहीं से नहीं मिलती, सब जगह से धोखा मिलता है, बाबा आप, फिर याद आता है, ऐसा होता है ना, फिर बाबा कहते हैं। और अगर पहले नंबर में कहो बाबा आप बैठे हो सब ठीक हो जाएगा, तो बाबा कहीं ना कहीं निमित्त बनाएगा किसी न किसी को। ऐसे नहीं सोच करके कहो आप तो निराकार हैं, आप तो परम धाम में रहते हैं, आप मेरी कहां सुनते हैं, ऐसे ऐसे कहकर रूरियान करते हैं। लेकिन बाबा तो कहता है मैं निराकार हूं या साकार, मैं तो तुम बच्चों के साथ ही हूं, लेकिन तुम बच्चों की सच्चाई को मैं देखता हूं, सच्चे दिल पर साहेब राजी। जो जितना सच्चाई से और भावना से बाबा कहो और बाबा की हाजिरी का अनुभव करो, सच्चे साफ स्वच्छ रहो, अंदर एक बाहर दूसरा रूप न हो, अंदर किसी देहधारी की तरफ आकर्षण है, देहधारी के सहारे का सहयोग का अपेक्षाएं हैं, और ऊपर ऊपर हम कह रहे हैं हमारे साथ तो बाबा है, बाबा कभी साथ नहीं निभाता है, बहुत सच्चा है, भोला नाथ है, लेकिन भोलों का नाथ है, खुद भोला नहीं है, बहुत चतुर है, भोलों का नाथ है, जो भोले बच्चे हैं ना बहुत सच्चे भोले। एक माता थी, मैं एक जगह क्लास कराने गया तो बड़े प्यार से अनुभव सुना, हमने कहा कि आप लोगों क्या अनुभव है। वो जनवरी मास था और यहाँ मधुबन से एक डायरेक्शन गया था कि सब लोग संगठित रूप में अमृत वेले योग करो, तो मुझे समाचार मिला कि एक गीता पाठशाला में अपना स्थान नहीं है, मंदिर के अंदर 70 लोग अमृत वेले योग करने बैठते हैं 4 बजे उठ करके। नज़दीक था यहाँ से तो मैंने गाड़ी उठाई, हमने कहा चलो मिल के आते हैं, देखते हैं भाई इतना ठंडी पड़ रही है, हम लोगों को यहाँ हीटर ये वो चाहिए, गर्म चाहिए, वो लोग तो मंदिर में बैठते हैं क्या करते होंगे वहाँ। तो मैं शाम को पहुँचा, सबको बुलाया, कहा जो जो योग करते हैं सबको हम गिफ्ट देने के लिए टोली खिलाने आए मधुबन की, आ जाओ सब। तो सब आए बैठे आके, आपको क्या बताऊं, उनके पास कोई गर्म कपड़े भी नहीं थे, कोई के पास तो जुराब भी नहीं थी, जूते फटे पुराने होते हैं उनके, और ऐसी एक दीवाल और उसके साथ दरी बिछा करके और बाबा का एक फोटो लगा के योग करते थे 4 बजे। तो मैंने कहा इतने सब लोग इतनी ठंडी में माइनस जा रहा है, आप लोग योग करने आते हैं, क्या मिलता है, कुछ तो होगा, कुछ तो अच्छे अनुभव होते होंगे, तब तो आप भाग भाग के सब आते हो। तो एक बूढ़ा दादा बैठा था, 80 के ऊपर था, कहता है बाबा से मेरी बहुत मीठी मीठी बातें होती हैं, रू रियान होती है, जब मैं बाबा के आगे बैठता हूँ ना तो ये फोटो नहीं है, ये चैतन्य में बाबा मुस्कराता है, उसकी मूछें हिलती हैं, वो पैर बदलता है। इतना रमणीकता से उसने सुनाया, देखो भूलों का भगवान है, कैसे अनुभव कराता है, लोग ऐसे देखते रहते हैं तो फोटो है अनुभव नहीं होते, और उस फोटो में वो चैतन्य रूप में बाबा को सामने अनुभव कर रहा है, बड़े नशे से बाबा मेरे से बात करता है, मेरे सिर पर हाथ फेरता है, मेरे आगे ऐसे हाथ फैला आओ बच्चे गोद में लेता है, बड़े दिल से बाबा से बातें करता है। अब दूसरा हमने कहा माताओं को क्या अनुभव होता है, तो एक माता गुजराती थी वो बोली, खड़ी हुई गुजराती में बोलने लगी, भाई जी मेरा पति जो है ना मुझे कहता है तेरे को योग करना 4 बजे, तुम जा खेत पर बैठ पहरा दे जा करके, वहीं खेती पर योग कर जा करके, 4 बजे क्या तुम पूरी रात जा करके बैठ। कहे नहीं, मधुबन से डायरेक्शन आया 4 बजे योग करना है। अब उसको जबरदस्ती खेत पर भेज दिया, वो गई खेत पर बाबा 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 करते हुए, बाबा उसके सामने दिखाई दिए, वो लाइट ऊपर से चमकती हुई सी बाबा की, फिर ब्रह्मा बाबा ऐसे हाथ बांध के से खड़े हैं, अरे बच्ची तुमको योग करना ना अमृत वेले, तुम जाके चुपचाप सो जाओ, बाबा तुम्हारे खेत की पहरा दे देगा, तुम उसको बोलना कोई नुकसान नहीं होगा, हमने पहरेदार लगा दिया है। कहती है मैं रोज सो गई आकर के, उसको बोला पहरा हमने रख दिया किसी को, अपने आप ठीक रहेगा, मेरे को योग करने दो। अब मैं रोज अमृत वेले योग करती हूं और बाबा मेरे खेत पर पहरा देता है। भावना, भावना, भक्ति में भावना का भाड़ा मिलता है। यहां तो सच्चे दिल से बाबा कहो और बाबा हाजिर हो जाए। ऐसे अच्छे अच्छे अनुभव जब सुनता हूं, तुम कहता है एक है बुद्धि वाले, बहुत बुद्धि लगाते रहते हैं, और एक है भावना से भगवान को रस्सी में बांध लेते हैं। अभी वर्तमान समय बाबा को बहुत दिल से, प्यार से, सच्चाई से अगर बाबा कहोगे तो बाबा दूरी का अनुभव नहीं होने देगा। ऐसे नहीं समझना बाबा का तो पाठ पूरा हो गया, वो तो साकार में चला, आकार में चला, अब तो पता नहीं कैसे मिलेगा। लेकिन बाबा कहता है जब तक संगम युग है तब तक ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी अपने मूल वतन में जा नहीं पाएगी। और शिव बाबा तो आया ही बच्चों की सेवा में है, इसलिए दोनों आत्माएं, परमात्मा और ब्रह्मा बाबा की, दोनों को कंबाइंड अनुभव करने के लिए हम सब बहुत सच्चे साफ रहें। निराकारी वतन से भी बाबा आकर के बच्चों को मिलेगा। और अभी का जो समय है, मुझे तो ऐसे अनुभव होता है, साकार और अव्यक्ति पालना पूरी हुई, लेकिन निराकारी रूप से बाबा बच्चों की पालना कर रहा है, जन्म भी दे रहा है। हजारों बच्चे बाबा के पाठ के बाद 2017 जब अव्यक्ति पाठ पूरा हुआ, उसके बाद आज तक, पहले 9 लाख की संख्या ब्राह्मणों की थी, आज 14 लाख से भी ऊपर हो गई। कहां से आ रहे हैं बच्चे? बाबा नहीं मिला, बाबा की पालना नहीं मिल रही क्या? भले कैसे भी हैं, बच्चे हैं, और बाबा अपने बच्चों को अव्यक्त वतन से सब प्रकार की पालना देता है, हर प्रश्न का उत्तर देता है। लेकिन सच्चाई चाहिए बस, बहुत सच्चे दिल से बाबा के आगे बैठूं और बाबा को बोलो बाबा मैं आपसे जुदा हो ही नहीं सकता, कंबाइंड हूं। तो जैसे आत्मा और शरीर अलग नहीं हो सकते, ऐसे संगम युग पर हमारा इतना दिल का प्यार है जो बाबा हमसे अलग हो ही नहीं सकता। वो हमारे साथ छतरी की तरह रहता है, छत्र छाया की तरह रहता है, एकदम उससे अनुभव करो। सेफ्टी है इसमें, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा आपके ऊपर, कितना भी कोई प्रयास करे भी, लेकिन अगर बाबा की छतरी के नीचे मैं हूं, उनके साथ कंबाइंड हूं, तो कोई भी ये विद्या, भूत विद्या, मैली विद्या, उसका प्रभाव नहीं हो सकता, उससे बचने का वही साधन है। लेकिन जब हम थोड़ा बॉडी कॉन्शियस में आते हैं, जब थोड़ी सी ईर्ष्या द्वेष के अंदर आते हैं, स्वार्थ भावनाएं आती हैं, तो बाबा किनारे हो जाते हैं। बहुत सच्चे साफ दिल से बाबा को बहुत प्यार से आह्वान करो, बाबा को ऑफर करो, भोग भी ऑफर करो, और बाबा को कहो बाबा ये बहुत स्वच्छ आसन है, अब इस आसन पर बैठने के लिए और कोई स्थान नहीं है, केवल आपको ही है, अब इसके अंदर जरा भी व्यर्थ की बातें नहीं चाहिए, कोई भी ऐसी इधर उधर की बातों का विस्तार नहीं चाहिए। गुलजार दादी के रथ को बाबा ने क्यों लिया, एक बार बाबा ने खुद बताया कि बच्ची का जो मैंने रथ लिया, इतना समय से सेवा ली, उसके दो कारण थे। एक, बच्ची ने अपने संकल्पों में बहुत इकोनॉमी की, कोई भी संकल्प व्यर्थ नहीं किया, इतना स्वच्छ मन, दिल, भावनाएं जो भगवान को पसंद आ गई। और दूसरा, इस बच्ची ने अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल किया, जो 14-14 घंटे बाबा ने उस वाणी के द्वारा वाणी चलाई, उस मुख के द्वारा वाणी चली ना, इतनी सारी मुरलियां, आप सब पढ़ो, किसने किसने पढ़ी है, 69 से 2017 तक 48 साल का हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट छोड़ दो, कंप्यूटर वाली छोड़ो, प्रिंटेड कॉपी हमारे पास है। इतना बाबा ने अव्यक्ति रूप में हम बच्चों की पालना की है, रिवाइज करो और उसको अच्छी तरह से पढ़ करके अपने चिंतन को ऐसा बना लो जहां चिंतन शुद्ध है, विचारधाराएं हमारी अच्छी हैं, अब बाबा को बहुत प्यार से सवेरे सवेरे आह्वान कर लो, बाबा आज इस कर्म के लिए, इस सेवा के लिए हम जा रहे हैं, आप हमारे साथ साथ रहना, आप हमको कंबाइंड स्वरूप का अनुभव कराना, हम आपकी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। ऐसे बाबा को साथी बना करके, कंबाइंड बना करके कोई भी कर्म करेंगे उसमें सफलता न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। एक नियम बनाओ, पहले पहले जब विदेश में बाबा ने ग्रुप भेजा था तो एक संदेशी को साथ में भेजा, वो संदेशी बहुत एक्यूरेट, सील दादी थी, सुना होगा सील दादी का नाम, दीदी मनमोहिनी की छोटी बहन, बहुत एक्यूरेट संदेशी थी। तो जब बाबा ने सात लोगों को भेजा उसमें सील दादी को भेज दिया और कहा बच्ची कोई भी स्थान पर सेवा करने के लिए जाना तो बाबा से पूछ के जाना, ऐसे नहीं जाना। एक बाबा का कमरा बनाना जिस स्थान पर है ना, एक कमरा बनाना और जब कहीं निकलो तो एक मिनट बाबा के आगे खड़े होकर के दृष्टि लेकर के बाबा को कहना बाबा आप चलो, आप कार्य ये काम है, ये सेवा है। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ जरूरी कहीं से अपॉइंटमेंट मिली किसी की, अमेरिका में थे और ऊंची मंजिल पर थे सब, थे तो जाने लगे, सील दादी घर में ही थी। जब वहां से निकले बाहर आए कोई चीज भूल गए, फिर ऊपर चढ़े, फिर नीचे आए, फिर कुछ हुआ, फिर भूले, फिर ऊपर चढ़े, एक एक चीज के लिए तीन चार बार चढ़े उतरे, टाइम चला गया। आखिर पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो सील इंदिरा दादी फटाफट बाबा के पास गई, बाबा ऐसा हो रहा है, बच्चे आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। बाबा की आज्ञा है कि बाबा के कमरे में आके मिल करके फिर जाना, और बच्चे जल्दी जल्दी जा रहे हैं इसलिए बाबा ने इनको सिखाने के लिए ऐसा किया। ऐसी आज्ञा मानते हो आप सब? कहीं भी जाओ, जब घर से बाहर निकलो, एक भाई ने क्या किया, अपनी फैक्ट्री बहुत बड़ी फैक्ट्री है तो उसने अपनी फैक्ट्री में जाने के लिए कभी कभी कमरे से निकलने जल्दी जल्दी में जूता पहना चले गए, फिर जूता उतार के कमरे में कैसे जाए बाबा के, तो उसने क्या किया, वो सीढ़ी के बीच में थोड़ा स्थान था वहां बाबा का फोटो रख दिया और जब ऊपर से उतरे, भले जूता पहना हुआ है, ऑफिस में जाना है, तो एक मिनट खड़े होके बाबा की दृष्टि ले और बाबा को बोले बाबा आज ऊपर छुट्टी नहीं लिया, अभी तो आपसे यहां से छुट्टी ले, आप हमारे साथ चलो। मतलब बाबा से इतना स्नेह भरा संबंध और उसके कारण उसकी फैक्ट्री अपने आप चलती गई, चलती गई, बढ़ती गई, कोई टेंशन नहीं। हम सब इस संगम पर बाबा के साथ का फायदा उठाएं, ऐसा फायदा कोई नहीं उठा सकता जैसा हम लोग उठाते हैं, क्योंकि बाबा गुप्त है, दिखाई तो किसी को नहीं देख देता है, लेकिन जिन बच्चों ने अपने साथ बाबा को ऐसे रखा है वो अनुभव करते हैं कि हर कर्म जैसे बाबा के डायरेक्शन से हो रहा है, जो कुछ मैं कर रहा हूं, जो बोल रहा हूं, बाबा अपने आप करा रहा है। मैं इतने समय से मुरलियां भेजता हूं, 48-50 साल पूरा हो गया, लोग कहते हैं आपने वरदान बड़ा अच्छा लिखा, आज व्यक्ति सारा बड़ा अच्छा था, मैं कहता मैं कुछ भी नहीं करता, आप लोग धोखा खा रहे हो मेरे को बीच में देख के। जब बैठता हूं एक घंटा आधा घंटा काम करने के लिए, कंप्यूटर तो ऑन करता हूं, लेकिन बाबा हमारे साथ ऐसे छत्र छाया के रूप में पीछे फोटो है, और ये अनुभव करता हूं कि बाबा आप बैक में हो ना, हमारे बैक बोन हो, बैक बोन बिना तो शरीर भी नहीं टिक सकता है, और आप हमारे बैकबोन हो, आपको जो लिखाना है ये उंगली चल रही है, आपको जो कहना है कह देना, लिख दूंगा मैं। और इतना प्यार से ऐसा बाबा की याद में जब लिखते हैं तो ऐसे लिखता है कि जैसे मेरे लिए लिखा गया, मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, बाबा बच्चों की पालना कर रहा है और कराने के लिए कोई को तो निमित्त बनाएगा, हम अपनी बुद्धि को उसमें मिक्स न करें, जो बाबा कहे जैसा बाबा कहे। तो जब हम बाबा के ऊपर इतना समर्पित भाव से और कर्म करने के साथ बाबा का आवाहन करते हैं तो बाबा के साथ का कंबाइंड स्वरूप का अनुभव होता है, कराने वाला करा लेता है, नाम हमारा हो जाता है, काम उसका होता है, कराने वाला वही करा रहा है ना, इतने बच्चों की पालना कौन कर रहा है, मुरली आ रही है, पत्र पुष्प आ रहे हैं, व्यक्ति सारे आ रहे हैं, इतने 14 लाख लोग उसी से पल रहे हैं, पालना ले रहे हैं, और कोई बीच में मेरे को दलाली दे, कराने वाला करा रहा है। ये संगम युग के अनुभव बहुत विचित्र हैं, और इस समय पल पल में बाबा के साथ का कंबाइंड स्वरूप का अनुभव होता है। अब वर्तमान समय हम सब उससे जुदा ना हो, इतना सच्चे दिल का प्यार, बस मेरा बाबा मेरे साथ है, उसने मुझे ऐसे जीवन दी है, किसी के प्रति भी मुझे व्यर्थ नहीं सोचना, कोई कुछ भी मेरे लिए करे, क्योंकि वर्तमान समय हिसाब किताब भी चुकते होते हैं ना साथियों के साथ, जिनके साथ हमने 84 जन्म पाठ बजाया है, वही आत्माएं आकर के संगम पर मिली हैं, तो कुछ न कुछ जो नीचे ऊपर हुआ है वो हिसाब भी आता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, भले इसमें नहीं बिगाड़ा है, किसी जन्म में तो बिगाड़ा होगा, ऐसे थोड़ी आ गया सामना करने के लिए। इस बात को बहुत त्रिकालदर्शी होकर के विचार करना, अगर कोई के सामने कोई किसी भी प्रकार का पेपर आ रहा है हिसाब किताब का, परिवार में, संबंधों में, टीचर साथ में, कोई भी परिवार का सदस्य कोई रूप में विघ्न रूप बन रहा है, और हम उसको दोष दें, अपना दोष निकालें, क्या है सामने किया, बाबा कहता तुम अपने मन को शांत रख, ये कुछ पिछले जन्मों का खाता है चुकतू करने के लिए, अगर तुम ज्यादा सोचेगा तो और हिसाब किताब बन जाएगा, नया बन जाएगा, इसलिए बिना सोचे ठीक है, खुशी से प्यार से बाबा के साथ कंबाइंड रह करके उसको चुकतू कर दो, बाबा बहुत मदद करेगा। कहता सूली जैसी बात भी कांटा हो जाएगी, सूली जितनी कांटे जैसी हो जाएगी, आएगी तो जरूर, लेकिन वो सूली बन करके नहीं आएगी, शरीर का हिसाब किताब भी आएगा, संबंधों में टकराव रूप में भी आएगा, प्रभाव रूप में भी आएगा, किसी भी रूप में आए, अगर बाबा मेरे साथ कंबाइंड है तो उसको हम बहुत सहज रीति से पार कर लेंगे, और बाबा को कमाए रखने के लिए ये बहुत मन बुद्धि को दिल को स्वच्छ रखो, साफ रखो, किसी के प्रति भी वैर भाव नहीं, किसी के प्रति भी ईर्ष्या द्वेष नहीं, किसी से बदला लेने की भावना नहीं, सब अच्छे हैं, सब निर्दोष हैं, कुछ तो हमारा हिसाब किताब होगा इसलिए बात आई। अगर मन बुद्धि को ऐसे क्लीन रखेंगे, क्लियर रखेंगे, तो बाबा के साथ का कंबाइंड स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। तो अभी बैठ जाओ 5 मिनट के लिए सब भ्रकुटी आसन पर, देखो बाबा हमारे साथ कंबाइंड होता है, दोनों को बुलाना, अकेले नहीं बुलाना, इस समय एक तरफ शिव बाबा एक तरफ ब्रह्मा बाबा, बीच में मैं उनका बच्चा, दोनों की शक्तियों का अनुभव करो, और इतना बहुरूपी है तो एक के साथ नहीं सबके साथ हो जाएगा, वो तो श्री कृष्ण को दिखाते हैं हर गोपी के साथ, उस आकार में तो नहीं हो सकता, लेकिन अव्यक्ति रूप में निराकार रूप में तो हम सब उसके साथ का उनकी शक्तियों का अनुभव कंबाइंड कर सकते हैं। तो सब कंबाइंड होके बैठो, मास्टर त्रिमूर्ति हूँ इस भ्रकुटी आसन पर चमकते हुए सितारे के साथ, एक तरफ परम पवित्र शिव बाबा हैं और एक तरफ आदि पिता ब्रह्मा बाबा हैं, ये मात पिता के रूप में हम सबको शक्तियां दे रहे हैं, उनकी शक्तियों के नीचे मैं आत्मा बहुत सुरक्षित हूँ।
साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा,
साथ तुम्हारा प्रभु कितना प्यारा,
मिल गई मंजिल मिल गया किनारा, मिल गया किनारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा,
साथ तुम्हारा प्रभु, माधव बाबा माधव, त्रिकरणी बाबा महादेवी।
अब ना भंवर का डर ना ही फिकर है, ना ही फिकर है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यार।
Love.